جزاكم الله خير. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا عزمه. اس کلاس میں ہم سورۃ النمل کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، معارف القرآن کی جلد نمبر 6 سے، اور اس میں آیت نمبر 45 سے لے کے 53 تک کا ترجمہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا، اور آج خلاصہ تفسیر سے شروع کریں گے، پیج نمبر 589 سے. تو خلاصہ تفسیر میں بھی ترجمہ ریپیٹ ہوتا ہے، انڈر لائنڈ جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ترجمہ کے ہوتے ہیں، اور بریکٹس کے اندر بین القوسین بریکٹس اس کے اندر تفسیر ہوتی ہے جو حضرت اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اس کو انہوں نے یہاں پہ نقل کر دیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ اور ہم نے قوم سمود کے پاس، یعنی سمود تو ایک فرد کا نام تھا، ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا سام، ٹھیک ہے. تو سام کی اولاد میں یہ ایک شخص آیا تھا جس کا نام تھا سمود، ٹھیک ہے، غالباً سام کا یہ پوتا تھا یا پوتے کا پوتا تھا، ٹھیک ہے، جو بھی تھا لیکن سام کی اولاد میں تھا. تو اس کے نام، یعنی اس کا نام جو ہے نا، پھر اس کے جو آگے اس کا خاندان چلا، تو اس پورے کے پورے خاندان کو، پھر اس قبیلے کو جو ہے نا، وہ قوم سمود کہا جانا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. تو صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے پاس ان کے برادری کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے. تو یہ اسی قوم میں پیدا ہوئے ہوئے ایک فرد تھے، صالح علیہ السلام. ان کا نام بھی جو ہے وہ صلحا یصلحو، ہے نا، کہ درستگی کرنا کسی چیز کی، صلح کرنا کسی چیز کو، صحیح کرنا، ٹھیک ہے. تو ان کا نام بھی صحیح کرنے والا، صالح. تو صالح کا لفظ ویسے اردو زبان میں جو استعمال کرتے ہیں، یا عربی زبان میں صالحین، ہے نا، نیکوکار لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی خود نیکی کے اوپر جو پابند ہوتے ہیں، ان کو صالح کہا جاتا ہے یا صالحین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا اپنا ذاتی نام بھی صالح ہی تھا، ٹھیک ہے. تو صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یہ پیغام دے کر کہ تم شرک کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو. کیا پیغام دیا؟ ان کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ کی عبادت کرو کا مطلب کیا؟ کہ شرک کرنا ختم کرو اس کے ساتھ. عبادت تو یہ ویسے بھی اللہ کی کرتے تھے، لیکن شرک بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے، جیسے کہ سارے مشرکوں کا یہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو اس کے ساتھ. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو ہوا کیا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں اپنی، کہ چاہیے تو یہ تھا کہ سبھی مان لے آتے ہیں نا، اچھی بات کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، سچی بات کر رہے ہیں، ایک ایسی بات کہ جس سے کہ یہ لوگ ایک یعنی انکانشیسلی یہ لوگ واقف بھی تھے اس بات سے کہ بھئی اللہ تو واحد ہے، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اکیلا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے وہ سب کو رزق پہنچایا ہوا ہے، تو عبادت بھی ظاہر ہے اللہ ہی کی کرنی چاہیے. تو ہونا تو چاہیے تھا کہ سب جو ہے وہ ان کی بات مان لیتے، مگر ہوا کیا؟ خلاف توقع. خلاف توقع کا مطلب کہ ایک انسان کی ایک نارمل سرکمسٹانسز کے اندر جو ایک توقع بن جاتی ہے نا، کہ بھئی جب صحیح بات کر رہا ہوں تو لوگ مان لیں گے میری بات، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس دنیا کے اندر جو ہے نا، وہ بہت سارے فیکٹرز جو ہے وہ انسان کے اوپر اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک صحیح بات اس کے سامنے آتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے. وہ پھر بھی اس کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری فورسز، ٹھیک ہے نا، بہت ساری مختلف قسم کی فورسز جو ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ایک کامن سینس والا جو ایک ریئیکشن تھا، ایکسپیکٹڈ ریئیکشن تھا، وہ ویسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ریئیکشن وہ شو کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے نا، انسان یہ کوئی روبوٹ نہیں ہے، ये कोई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एंड्रॉयड नहीं है कि जैसा आप उसके अंदर जो है वो फीड करेंगे, है ना, आपने कोड उसका एक लिख दिया है, प्रोग्राम उसका एक बना दिया है जिसके अंदर आपने लिख दिया है कि भाई उसके अंदर अगर ये इनपुट आएगी तो उसके ये आउटपुट निकलेगी। इंसान में ऐसा नहीं है खाली, ठीक है, कि ये इनपुट आएगी तो ये आउटपुट निकलेगी, बल्कि इनपुट आने के साथ साथ जो है ना वो एनवायरमेंटल इनपुट्स जो कि बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं होती, बजाहिर किसी प्रोग्रामर के कंट्रोल में नहीं होती ना एनवायरमेंटल इनपुट्स, ठीक है ना। भाई आपने प्रोग्राम किया कि मैं कल जो है ना वो एक पार्टी रखूंगा अपने घर के बाहर, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो लोग आएंगे और लोग जो है ना वो यानी अच्छी फिजा के अंदर बैठेंगे, आपस में खाएं पिएंगे हम लोग, है ना। लेकिन हुआ क्या, जब कल का दिन आया तो सख्त किस्म के जो है ना वो बादल आ गए और आंधी आनी शुरू हो गई, और आंधी आने के बाद जो है वो बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश शुरू हो गई, है ना। तो आपने सारा प्लान कर लिया, आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि मेरी कल की पार्टी बड़ी अच्छी हो जाएगी, बड़ा मजा आएगा, लेकिन आपने फैक्टर इन इस चीज को किया ही नहीं था कि भाई कल बारिश भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि कल बारिश होने वाली है ना। तो ये जो फैक्टर आया ना, इस फैक्टर ने जो है वो एक्सपेक्टेड आउटकम को स्क्यू कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है ना। तो यही मामला जो है ना, जिस तरह से कि एक पार्टी की जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, उसी तरीके से एक इंसान का रद्दे अमल भी जो है ना ये अफेक्ट होता है उसके एनवायरमेंट की वजह से, ठीक है। तो इनका भी यही मामला हुआ कि भाई इनके एनवायरमेंट में जो है वो शयातीन भी मौजूद थे, नफ्स भी मौजूद था, है ना। तो ये जो है वो नबी की बात को सही समझने के बावजूद मानने से इनकार कर देता है बंदा, ठीक है। तो चाहिए तो ये था कि सभी मान लेकर के आ जाते हैं, मगर खिलाफे तवक्को अचानक उनमें दो फरीक बन गए, दो ग्रोह बन गए जो दीन के बारे में बाहम झगड़ने लगे, ठीक है। यख्तसिमून, इख्तसमा यख्तसिमू का मतलब होता है आपस में झगड़ना या क्वारल करना या आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है। तो वो ये जो बाहम झगड़ने लगे, क्या मतलब झगड़ने लगे, यानी एक फिरका तो ईमान ले आया, ठीक है ना, वो अपने नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर जो है ना वो हावी हो गया, ठीक है ना, उसने जो है वो उनको सप्रेस कर दिया, ठीक है, और नबी की बात को जो है ना उसने तस्लीम कर लिया। ये कैसे तस्लीम कर लिया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इनके ऊपर गालिब क्यों नहीं आ सके, जबकि दूसरा फैक्टर जो है, दूसरा जो ग्रो था वो नहीं लेकर के आया ईमान, ठीक है ना, नहीं लेकर आया ईमान। तो भाई ये कैसे होता है, ये जो है एक ग्रोह जो है वो ईमान ले आया, दूसरा ग्रोह ईमान ना लेकर के आया, क्यों भाई, क्यों इसके ऊपर सवाल पैदा होता है ना, क्यों। तो आपसे अगर हम जवाब पूछें कि ऐसा क्यों हुआ कि एक ग्रोह जो है वो ईमान लाए, तो भाई उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से वो ईमान लेकर के आ गए, और दूसरे ग्रोह ने क्या ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से वो ईमान नहीं लेकर के आए, है ना। भाई दोनों उसी कौम के फर्द थे, दोनों एक साथ ही जो है वो उस शहर के अंदर या उस कस्बे देहात में रहते थे, है ना, और दोनों साले अलैहिस्सलाम को पहले से जानते थे क्योंकि वो उन्हीं के दरमियान पैदा हुए हुए एक फर्द थे, उन्हीं के दरमियान उनकी परवरिश हुई थी, वो उठान हुई थी, तो सब कुछ तो कॉमन था दोनों के दरमियान, सब कुछ तो सेम था लोगों में। तो एक ग्रोह बन गया जो मानने वाला बन गया, एक ग्रोह बन गया जो नहीं मानने वाला बन गया, भाई क्या चीज। दोनों के ऊपर शैतान तो उस कस्बे के अंदर मौजूद था, तो जिस तरह मानने वालों के लिए शैतान मौजूद था उसी तरह ना मानने वालों के लिए भी शैतान मौजूद था। जिस तरह जो है वो नफ्स है ना, इंसान के अंदर जो नफ्स होता है वो मानने वालों के अंदर नफ्स था, उसी तरह ना मानने वालों के अंदर भी नफ्स था, है ना। दोनों ही काफिर थे ना पहले, दोनों ही जो है वो गुमराही के रास्ते पर थे ना, सौले अलैहि सलाम की दावत और तबलीग से पहले दोनों ही काफिर थे, दोनों ही ग्रोह के लोग काफिर थे, तो फिर ये कैसे मुसलमान हो गए और ये कैसे मुसलमान नहीं हुए, भाई क्या चीज डिफरेंट हुई, क्या चीज डिफरेंट हुई। ये अगर आप इसके ऊपर कुछ तफक्कुर फरमाएं और जवाब देने की कोशिश फरमाएं, क्या चीज डिफरेंट हुई इन दोनों के दरमियान, या क्या ऐसी चीज थी कि जिसकी वजह से मानने वाले मान गए और ना मानने वाले नहीं माने, क्या ऐसी चीज थी, ठीक है, ये कौन सी चीज होती है। एतमाद ऑन रसूल, नहीं भाई, एतमाद ऑन रसूल तो ईमान को कहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एतमाद क्यों कर लिया और दूसरों ने एतमाद क्यों नहीं कर लिया। ना, ईमान लाने की बजाय आप एतमाद का लफ्ज इस्तेमाल करें, क्योंकि है तो ये एतमाद ही। उन्होंने क्यों एतमाद कर लिया, दूसरों ने क्यों एतमाद नहीं किया, दोनों ही तो एक जैसे ही थे, सब कुछ तो कॉमन था इन दोनों के दरमियान, राइट। क्या क्या चीज होती है जिसकी बुनियाद पर कोई मानता है और जिसकी बुनियाद पर कोई नहीं मानता जी, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए ना जिसका हमें पता चले, ताकि अगर हम भी इस तरह के क्रॉस रोड्स के सामने आए तो हमें, हमारे पास भी कुछ होना चाहिए ना कि भाई कैसे लेकर के आना है, मैंने क्या चीज मेरे अंदर हो जिसकी वजह से मैं ये सही रास्ता इख्तियार करूं या गलत रास्ता इख्तियार करूं। द ग्रुप दैट एक्सेप्टेड गेव प्रेफरेंस टू सालेह अलैहि सलाम ओवर देयर ओन नफ्स, हाउ वर दे एबल टू गिव प्रेफरेंस ओवर देयर ओन नफ्स, दिस इज द क्वेश्चन। अल्लाह ताला हिदायत का फैसला करते हैं, आपने फरमाया बड़ा अच्छा जवाब है, अल्लाह ताला ने हिदायत का फैसला किया, लेकिन हम आपसे ये वाला सब जवाब नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि ये तो तकदीर वाली बात है। अल्लाह ताला ने जिसकी तकदीर में हिदायत लिखी हुई थी वो हिदायत लेकर के आया, जिसकी तकदीर में नहीं लिखी हुई थी वो हिदायत नहीं लेकर के आया। हम तकदीर के लेवल पे जा ही नहीं रहे, हम तो ग्राउंड रियालिटी की बात कर रहे हैं, ग्राउंड रियालिटी, ठीक है ना। क्योंकि तकदीर का तो हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता, उनके बारे में क्या। नफ्स और नफ्स सर तकबर, देवर स्टिल ऑन फितरत, हाउ कैन यू से दैट। नहीं, काफिर थे भाई, काफिर जो होता है वो तो उसकी फितरत अच्छी खासी मस्क हो चुकी होती है। सो स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग लॉबी वाली बात नहीं, अकली दलाइल। अकली दलाइल क्या मतलब, अकली दलाइल, उन्होंने अपनी अकल के ऊपर दलाइल दिए, उन्होंने अकल के ऊपर दलाइल नहीं दिए। हिल्म और इल्म की बुनियाद पर, हिल्म और इल्म की बुनियाद पर मानने वाले मान गए, और हिल्म और इल्म की बुनियाद पर ना मानने वाले नहीं माने। नबी के साथ खुशगुमानी करी उन्होंने। अब वो आज के आप जो है वो हजरत जी की नसीहत की बुनियाद पर जवाब दे रहे हैं। नहीं, ईमान की मजबूती, ईमान तब था ही नहीं तो कहाँ से मजबूती आ गई। अभी तो हम ईमान से पहले की बात कर रहे हैं कि पहले तो काफिर थे, कैसे ईमान। देखिए ये जो डिसीशन होते हैं ना, ये डिसीशन, ठीक है, कि मैंने सच को कबूल करना है कि मैंने सच को कबूल नहीं करना है, ठीक है ना, ये डिसीशन लेना होता है हर बंदे ने। मैंने सच को कबूल करना है कि मैंने सच को कबूल नहीं करना, दोनों के सामने सच है, दोनों के सामने सच है, दोनों ग्रुपों के सामने सच है ना, और दोनों के ऊपर नेगेटिव फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, है ना, दोनों के ऊपर नेगेटिव फोर्सेस भी अप्लाई हो रही हैं, और दोनों के सामने सच के ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है ना। अब व्हाट डिटरमिन्स कि कौन कबूल करेगा कौन नहीं कबूल करेगा, इधर जो है ना, एक तो अल्लाह ताला का फैसला, तकदीर, वो तो दूसरी बात हो गई, तकदीर वाली बात हो गई। बंदे ने क्या करना होता है, यहां पर आकर के उसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कुव्वते इरादी, कुव्वते इरादी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन। सच इसके सामने भी है, सच उसके सामने भी है। इसने जो है वो कुव्वते इरादी से, अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन से उस सच को जो है ना वो एडॉप्ट कर लिया, उस सच को जो है वो उसकी तस्दीक कर दी, इकरार कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। तीनों जुबानों में आप बोले जो भी बोलना है, इकरार कर लिया, तस्दीक कर दी, एडॉप्ट कर लिया, उसके सामने अपने आप को सबमिट कर दिया। और दूसरे जो थे ना, उन्होंने अपनी कुव्वत इरादे को इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और अपने आप को जो है वो नेगेटिव फोर्सेस के सामने सबमिट कर दिया। पॉजिटिव फोर्स के सामने सबमिट करने की बजाय नेगेटिव फोर्स के सामने सबमिट कर दिया। दिस इज वेयर, यानी दिस इज हाउ द टू ग्रुप्स वर फॉर्म, ठीक है। तो ये जो काम करना होता है ना, ये हम सब ने करना होता है और आज भी करना होता है, सालेह अलैहि सलाम के जमाने में भी करना था और आइंदा भी यही काम करना होगा। ये जो है ना, ये वाला काम जो है ना, कोई दूसरा आके आपके लिए नहीं करेगा, कोई शेख साहब आके आपके लिए नहीं करेंगे कुव्वत इरादी से फैसला करना, कोई शेख साहब आपके आपके बिहाफ पे फैसला नहीं करेंगे। शेख साहब तो क्या, कोई नबी अल्लाह भी आकर के आपके बिहाफ पे ये फैसला नहीं कर सकता। ये फैसला आपने खुद करना है, ये फैसला मैंने खुद करना है, ठीक है ना। तो भाई इसके लिए तैयार अपने आप को रखें। ये हर वक्त लाठी तलाश करते रहना, हर वक्त जो है ना कोई बेसाखी तलाश करते रहना, नहीं, बेसाखियां लाठियां जो है ना मदद जरूर करती हैं, लेकिन उस बंदे को मदद करती हैं जो कि बेसाखी का सहारा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाए, अपना हाथ खोले, और दूसरी तरफ से जो उसने अपने हाथ में चीजें पकड़ी हुई है ना, उनको छोड़े, उनको रिलैक्स करे, अपने हाथ को खाली करे, फारिग करे अपने हाथ को, है ना, तब उसके हाथ में बैसाखी आएगी ना, तब उसके हाथ में जो है वो सपोर्ट आएगी ना। वो उधर से जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपने हाथों को अल्लाह ताला ने दो हाथ दिए, दोनों हाथों से उसने किसी और चीज को पकड़ा हुआ है, सामने से जो है वो कोई उसको मदद के लिए जो है वो कोई रोप पकड़ा रहा है, कोई बैसाखी पकड़ा रहा है, कोई जो है वो उसके लिए अपना हाथ पकड़ा रहा है, और ये जो है वो पीछे से हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। कहता नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे ऐसे ही बचा लो, बगैर मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुम ऐसे ही बचाओ, बगैर हाथ छोड़े हुए बचाओ। नहीं बचा सकता कोई उसको, पहले इसको अपनी गिरफ्त ढीली करनी पड़ेगी। और ये गिरफ्त जो है कौन ढीली करेगा, ये खुद करेगा अपनी गिरफ्त ढीली, है ना, अपनी प्री मेडिटेटेड जो इसके नजरियात हैं, जो प्री मेडिटेटेड इसके जो 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 सोच है, राइट, जो इसने जो है वो बनाए हुए अपने तखयलाती महलात अपने जहन के अंदर बनाए हुए हैं, खुद इसको इनको छोड़ना पड़ेगा। तब आगे से जो हाथ पकड़ा रहा है उसका ये हाथ पकड़ सकेगा। नहीं छोड़ना चाहता तो आगे से कितना ही अच्छा नेक बंदा आ जाए, अल्लाह का नबी आ जाए, वली आ जाए, कोई भी आ जाए, इसको फायदा नहीं पहुंच सकता, इसको कोई नहीं फायदा पहुंचा सकता। ठीक है जी, कोई सवाल इसके ऊपर? क्या आपने लिखा था, ये मैंने पढ़ नहीं सका था, अपने दरमियान मौजूद साजिद अमीन साहब को सच्चा समझा। बात समझ में आई जो साजिद ने आपको समझाने की कोशिश करी है? ठीक है ना, ये हम सबके साथ ये इश्यूज आजकल भी चल रहे होते हैं और चलते रहते हैं। हम अपने प्री मेडिटेटेड और अपने जो पुराने दोस्त हैं, पुराने यार हैं, पुरानी मोहब्बतें हैं, पुरानी आशिकियां हैं, पुरानी जो है वो अपनी पैशंस हैं, राइट, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। आगे से जो है वो कोई शेख साहब आ जाए, कोई वली साहब आ जाए, वो हमें बुलाते रहेंगे, वो हमें हाथ पकड़ाते रहेंगे, हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते ना, ये हमारा अपना डिसीशन होता है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, अच्छे शेख साहब मिल जाते तो शायद मैं छोड़ देता, है ना, आखिरी नबी मिल जाते तो शायद मैं छोड़ देता, ये साले अलैहिस्सलाम मिले तो साले अलैहिस्सलाम तो महबूब इलाही नहीं थे, है ना, आखिरी नबी नहीं थे, है ना, तो इस वजह से मैं नेक ना बन सका। ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया? साले अलैहिस्सलाम पे डाल दिया। साले अलैहिस्सलाम वाज नॉट नाउज़बिल्ला सुम्मा नाउज़बिल्ला सुम्मा नाउज़बिल्ला, साले अलैहिस्सलाम वाज नॉट गुड इनफ, वाज नॉट गुड इनफ। उसी तरह हमारे दौर के 21वीं सदी के शेख हैं, ही इज नॉट गुड इनफ, है ना, हमें कोई बायजीद बुस्तामी मिल जाए ना, फिर मैं नेक बन जाऊंगा, राइट, मुझे सिरी सिख्ती रहमतुल्लाह ने मिल जाना, फिर मैं नेक बन जाऊंगा। ये तो आजकल के जो मौलवी लोग होते हैं ना, ये तो इस काबिल ही नहीं होते कि मैं इनको फॉलो करूं, कि मैं इनके साथ जो है वो जोड़ू, राइट, पुटिंग द ब्लेम ऑन समवन एल्स। हालांकि ब्लेम जो है ना सिर्फ हमारे अपने ऊपर है, सिर्फ हमारे अपने ऊपर ब्लेम है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जो है ना, फिर हमेशा दो फिरके बन जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि एक जो है वो ईमान मान लेता है, सच सामने नजर आ रहा है उसको, उसको मान लेता है, दूसरा जो है वो नहीं मानता। फिर इन दोनों के दरमियान आपस में एक जो है वो एक इख्तसमा यख्तसमु शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इनमें फिर जो झगड़ा हुआ और कलाम हुआ, बाद इसमें बाज इसमें का सूरह आराफ में मजकूर है। तो सूरह आराफ में जहां अल्लाह ताला ने बड़े जबरदस्त मजामीन बयान फरमाए हैं, आराफ का जो मकाम है जन्नत और दोजख के दरमियान का, जो उसको आराफ कहते हैं, तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने फिर अपने यानी इन पुराने कौमों का भी जिक्र किया है, नूह अलैहिस्सलाम के जिक्र से शुरू करके, फिर हूद अलैहिस्सलाम, फिर सालेह अलैहिस्सलाम, फिर लूत अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, राइट, इन सब का जिक्र बड़े तफसील के साथ उसके अंदर है। और उसकी तफसीर में हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जबरदस्त यानी बातें उसके अंदर लिखी हैं, तो देखते हैं अगर हमें मौका मिलता है उसके बारे में कुछ कुछ थोड़ा बहुत उसमें से आपके सामने बयान करें। अल्लाह की तौफीक और कुव्वत इरादी में कैसे फर्क करें? अल्लाह की तौफीक मांगे, अल्लाह ताला से दुआ में मांगे अल्लाह की तौफीक, अल्लाह मुझे अपनी कुव्वत इरादी खैर के लिए इस्तेमाल करने में मेरी मदद फरमा, ये अल्लाह से तौफीक मांगे, ये मांगने की चीज है दुआओं के अंदर, ठीक है ना। और कुव्वत इरादी ये अपने करने की चीज है, ठीक है ना, जिस तरह अल्लाह ताला से शिफा मांगते हैं ना कि मेरा बच्चा बीमार हो गया, अल्लाह आप शिफा अता फरमा दें, लेकिन दवा भी कहते हैं अल्लाह दवा भी तू ही पिला देना इसको, कहते हैं अल्लाह ताला से अल्लाह पैनाडोल भी आप इसको खुद ही पिला दीजिएगा, खुद ही खिला दीजिएगा, हैं, आप उसको अस्पताल भी खुद ही लेके चले जाइएगा, एम्बुलेंस भेज दीजिएगा ताकि मेरा बच्चा अस्पताल भी पहुंच जाए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी आप खुद ही दिलवा दीजिएगा, ऐसा करते हैं आप राइट? करते हैं नहीं करते हैं ना? तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह की तौफीक हम मांगें, और कुवत इरादी तो खुद ही करना पड़ेगा, जिस तरह पैनाडोल जो है ना अपने पेट के अंदर खुद ही डालनी है, बच्चे के पेट में जो है वो खुद ही डालनी है ना दवा, उसी तरह कुवत इरादी खुद करने की चीज है और तौफीक जो है वो मांगने की चीज है। ठीक है जी। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तो ये तो बाद की बात है, ईमान लाने के बाद ये सब कुछ होता है, अभी तो हम ईमान लाने से पहले की बातें कर रहे थे। ठीक है, तो इरादों की पुख्तगी जो है ना ये बड़ी अहम चीज होती है। तो फरमाते हैं कि قال الملأ جیسے سورہ آراف کے اندر ہے، قال الملأ الذين نستكبروا من قومه للذين استضعفوا، ہے نا کہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ جو لوگ بظاہر یعنی زبردست نظر آتے تھے، تکبر کرنے والے لوگ جو تھے نا، ان کے سردار وغیرہ، تو وہ جو ہے نا وہ ان کے ان لوگوں سے کہنے لگے جن کو کہ وہ کمزور سمجھتے تھے۔ عجیب، یہ استضعفو کا جو لفظ استعمال کیا ہے نا سورہ آراف کے اندر ایمان والوں کے لیے، تو حضرت مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے زبردست تفسیر لکھی ہے اس کے اوپر کہ استضعفو کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایمان والے تھے وہ حقیقت میں ضعیف نہیں تھے، دے ور بینگ پرسیوڈ ایز ویک، ان ریالٹی دے ور ناٹ ویک، ٹھیک ہے نا؟ اور جو وہ لوگ تھے سردار ان کے قوم کے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے استکبر ہو کہ وہ تکبر کرتے تھے، وہ کوئی بڑے نہیں تھے، وہ بڑے تھے نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اٹس آل پرسپشن، ہے نا، یہ سب پرسپشن کا کھیل ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ ہوتا کوئی بڑا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اور جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ چھوٹا ہوتا نہیں ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، یہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے نا؟ جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہرگز کمزور نہیں ہوتا، لیکن جو بیوقوف ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں ہے نا، وہ اس کو کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کمزور ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا کلام نا، بس ہم اپنے اکابرین کے احسانات چکا نہیں سکتے جیسے انہوں نے اللہ کے کلام کو ہمارے سامنے کھولا ہے نا، کاش کہ ہم اپنے قیمتی وقت کو، اپنی زندگی کو یہ ٹاک شوز اور ڈرامے اور سیریل اور کرکٹ اور فٹ بال اور ان کے پیچھے ختم کرنے سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں اس سے، اور ہم اللہ کے قرآن سے اور اپنے اکابرین سے جو کہ اس قرآن کو کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں نا، کاش کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اگر جڑ جائیں نا، ہماری بگڑی ساری کی ساری بن جائے، ہماری ساری بگڑی بن جائے، دنیا بھی بن جائے، عاقبت بھی بن جائے، قبر بھی بن جائے، حشر بھی بن جائے، ہے نا؟ اور یہ ساری کے ساری جو ڈپریشنز اور ٹینشنز اور انگزائٹیز اور ڈسپوائنٹمنٹس اور مایوسی، ساری کی ساری رفو ہو جائے، رفو یوں کر کے چٹکی بجاتے ہوئے رفو، کہ چٹکی بجاتے ہوئے کوئی دنیا میں کام نہیں ہوتا، تدریجن ساری رفو ہو جائے۔ اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کے کلام کے اوپر جو تفاسیر ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، لیکن ہم کتنے ظالم ہیں، کتنے ظالم ہیں، کتنے ظالم ہیں کہ اس کو چھوڑ کر کے ہم جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم میچز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کھیلنا ہے کہ نفی نہیں کر رہے اس کے اوپر، تو ہم نے بچوں کے ساتھ بھی بات کر لی، کھیلو جا کر کے، خوب کھیلو جا کر کے، ہم بات کر رہے ہیں کہ تم کس چیز کو فالو کر رہے ہو، کن لوگوں کو فالو کر رہے ہو یار، رائٹ؟ کتنے بڑے ظالم ہو ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، اور اس ظلم کی سزا پا بھی رہے ہیں پھر بھی جو ہے وہ اپنے ظلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، رائٹ؟ تو اللہ کا کلام، اف خدایا، اس کائنات کا کے بنانے والے کی بات، رائٹ؟ کوئی مطلب، تو فرماتے ہیں کہ بعض اس میں کا آگے مذکور ہے، قالوا طیرنا بکا، وہ کہنے لگے کہ تم بدبختی تو تمہارے ساتھ ہے ساری کی ساری، اس طرح آدم بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں نے کفر پر اصرار کیا تو صالح علیہ السلام نے موافق عادت انبیاء علیہ السلام کے ان کو عذاب الہی سے ڈرایا، ٹھیک ہے، جیسے کہ سارے انبیاء ڈراتے تھے، جیسا کہ سورہ عراف میں ہے، فیأخذہم عذاب الیم، کہ تم کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا دردناک عذاب آ کر کے پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ لا وہ عذاب کہاں ہے، جیسے سورہ عراف میں ہے، کیونکہ سورہ عراف کے اندر ہی بڑی زبردست تفسیر ہے، تو حضرت ہیں یہاں پہ بار بار کوٹ کر رہے ہیں اس کو، قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا، لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو نا، ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے کوئی نبی ہو، तो इस पर साले ने सलाम फरमाया कि अरे भाइयों, तुम नेक काम यानी तौबा व ईमान से पहले अजाब क्यों जल्दी मांगते हो? क्यों कह रहे हो कि अजाब लेकर के आओ? यानी चाहिए तो ये था कि अजाब की वईद सुनकर तुम ईमान ले आते, ना ये कि ईमान तो ना लाए और बिलअक्स उस अजाब ही की दरख्वास्त करने लगे। यानी ऑन द कॉन्ट्ररी, बिलअक्स मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी तुम जो है वो अजाब ही की जो है वो दरख्वास्त कर रहे हो। ये तो बड़ी बेबाकी की बात है ना। तो कितना यानी बजाय इस इस्तेजाले अजाब के तुम लोग अल्लाह के सामने कुफर से माफी क्यों नहीं चाहते? इस्तेजाल का मतलब जल्दी लाना, किसी चीज को जल्दी मांगना। ठीक है, तो अजाब को जल्दी मांगने के बजाय तुम माफी मांग लो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला माफ कर देंगे, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, जिससे तवक्को हो कि तुम पर रहम किया जाए। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला तो है रहम करने वाले, रहीम करीम, यानी अजाब से तुम महफूज रहो। ठीक है, अल्लाह ताला तुम पर रहम कर देंगे, तुम अजाब से महफूज हो जाओगे। तो वो लोग कहने लगे सालहीन से बोस, सारा का सारा मसला सालहीन से बोस का होता है। वो कितनी प्यारी बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, डराने की बातें करते हैं, अकल की बातें करते हैं, दलीलों की बातें करते हैं, नहीं मानना, नहीं इसकी तो मैंने मानना ही नहीं है ना, कुछ कर लिए मैंने तो इसकी मानना ही नहीं है। ठीक है ना, यही एटीट्यूड होता है हर काफिर का, जैसे आज भी यही एटीट्यूड है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हम तो तुमको और तुम्हारे साथ वालों को मनहूस समझते हैं, है ना, कि जब से तुमने ये मजहब निकाला है ना, ये इजाद किया है तुमने, ये नया मजहब अपना इजाद कर लिया है, ठीक है, और तुम्हारी ये जमात पैदा हुई है, तुम्हारे साथ कुछ लोग हैं, चेले चांटे तुम्हारे साथ मिल गए हैं, तुम्हारे मुरीद जो है वो तुम्हारे साथ मिल गए हैं ना, तुम्हारी एक जमात बन गई है, तो उसके बाद से जो है ना कौम में ना इत्तफाकी हो गई है। पहले हम लोग अच्छा हल्ला गुल्ला वाली पिकनिक एंड पार्टी वाली जिंदगी गुजार रहे थे, क्लिफ्टन बीच पे भी जाते थे, हॉक्स पे भी जाते, कराची वालों को पता ही बातें है ना, हॉक्स पे भी जाते थे और सैंड स्पिट भी जाते थे, और जो है वो बारबेक्यू करते थे, और जो है वो अफ्तार पार्टियां हुआ करती थी हमारे यहाँ, है ना, सब एक साथ बैठ करके आपस में एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, कितनी प्यार मोहब्बत थे हमारे दरमियान, है ना। तो तुम्हारी वजह से जो है ना कौम में ना इत्तेफाकी हो गई है। ये कहाँ से मौलवी आ गया, ठीक है, इसने आकर के पर्दा, है ना, अब जो है ना वो औरतें एक साथ नहीं बैठ सकती मर्दों के, है ना, ये आते हैं तो भाई इनकी वजह से औरतों को जो है वो अलग जाना पड़ जाता है ना, और हम बैठ करके जो है ना वो अब जो है वो हंसी ठट्टे वाली बातें मौलवी साहब के सामने नहीं कर सकते, है ना, मौलवी साहब आ जाते हैं, एक मुसीबत पड़ जाती है हमारी फैमिली के अंदर, हमारी फैमिली गैदरिंग्स के अंदर एक मुसीबत पड़ जाती है, राइट। तो यही इन्होंने साले अलैहि सलाम को बोलना शुरू किया, 21वीं सदी वाली बातें, ठीक है, कि तो हमारी कौम में हमारे फैमिली सिस्टम के अंदर जो है ना ना इत्तेफाकी हो रही है तुम्हारी वजह से, और ना इत्तेफाकी की जो मुजर्रतें और खराबियां होती हैं वो सब मुरतब होने लगी हैं। ठीक है ना भाई, तुम भी हमारी तरह के दीन पे अमल करते, है ना, जाते हर थोड़े दिन के बाद उमरा करके आते, राइट, चक्कर लगा के आते काबतुल्ला का, और जो है वो तुम जो है वो जा करके चैरिटी या ऑर्गेनाइजेशन चलाते, तुम्हारे पास अगर पैसे थे तो चैरिटी, है ना, कोई एम्बुलेंस सर्विस चला देते, कोई जो है वो फलानी जगह पे जो है वो कोई स्कूल बना देते, कोई फलानी जगह पे जो है वो कुछ और इस किस्म के खेमे वेमे बांट करके आ जाते, है ना, इतना अच्छा तो दीन था, तुमको क्या मुसीबत पड़ गई है कि तुमने पर्दे की बात करनी शुरू कर दी, तुम्हें क्या मुसीबत पड़ गई है कि तुमने जो है ना वो झूठ के खिलाफ जो है वो कोई मुहिम चलानी शुरू कर दी है, और गीबत के खिलाफ और बेहयाई के खिलाफ क्यों बातें बोलना शुरू हो गए हो? अच्छा खासा तो दीन था यार, हम भी तो दीनदार हैं यार, हमें भी पता है पर्दा क्या चीज होती है यार, है ना, हेड स्कार्फ को पर्दा कहते हैं हम, है ना, हमें पता है पर्दा क्या चीज होती है, तुम कहां से एक नया दीन लेकर के आ गए हो कि नहीं पर्दा इसको नहीं कहते, राइट, प्लीज आगे से कुछ आप भी तो कुछ बोला करें यार, ठीक है, मतलब लिख करके बोलने का सिस्टम है, वरना तो फिर एक हंगामा खड़ा हो जाएगा कहीं। तो खैर, तो खराबियां होती हैं वो सब मुरतब होने लगी हैं तुम्हारे इस नए दीन की वजह से, ठीक है, बस सबब इन तमाम खराबियों के तुम लोग, यानी ईमान वाले वो मौलवी लोग हैं ना, तुम ही सारे के सारे खराबियों की जड़ हो। हाले अलैहि सलाम ने जवाब में फरमाया कि तुम्हारी इस नहुसत का सबब अल्लाह के इल्म में है, ठीक है, ये जो तुम्हें तुम्हारे ऊपर नहुसत आई हुई है अल्लाह ताला जानता है क्यों आई हुई है, यानी तुम्हारे आमाले कुफरिया अल्लाह को मालूम है, ये खराबियां उन्हीं आमाल पर मुरतब है, ठीक है ना, उन्हीं की बुनियाद पर ये तुम्हारी की सारी खराबियां तुम्हारे अंदर आई हुई है। चुनाचे जाहिर है कि ना इत्तेफाकी मजमूम वही है जो हक के खिलाफ करने से हो, है ना, यानी ना इत्तेफाकी जो तुम अब कौम में देख रहे हो ना, ये इस वजह से हो ये कि तुम लोग मानते नहीं हो मेरी बात, अगर तुम लोग भी मान लो तो सारी सारी की सारी कौम एक हो जाएगी, है ना, सारी की सारी कौम एक हो जाएगी, कोई तफरका नहीं होगा, कोई जो है वो दो यानी पार्टीज नहीं बनेंगी, ना, ऐसी कौमें दुनिया के अंदर बहुत सारी गुजरी हैं, सिर्फ एक यानी बहुत सारी गुजरी हैं ऐसी कौमें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पूरी की पूरी ईमान लेकर के आई थी, है ना, आ गई थी जब उन्होंने तौबा कर लिया, बाद में जाकर के तौबा कर लिए तो सारी की सारी मुसलमान हो गई थी। ठीक है, तो ऐसा कोई अन यानी इम्पॉसिबल चीज नहीं है कि सारे लोग ईमान लेकर के आ जाए, पूरी फैमिली जो है ईमान लेकर के आ जाए। सहाबा कराम के कितने कितने सहाबा थे जिनकी पूरी पूरी फैमिली जो है वो पूरे का पूरा ट्राइब ईमान लेकर के आ गया था, है ना। तो भाई तुम भी ईमान लेकर के आ जाओ, क्या इसके अंदर मुश्किल है, खाम खा के नहीं, सारे ईमान ले आएंगे तो फिर मजा क्या आएगा, इस वजह से हम नहीं लेकर के आते, है ना, फॉर द सेक ऑफ एक्साइटमेंट और है ना वो क्या कहते हैं वो फिल्मों के अंदर जो होता है, सारे के सारे अगर ये नेक बन गए तो फिर जो है वो क्या क्या एक लफ्ज होता है इसके लिए अंग्रेजी के अंदर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, जमाने के साथ भी तो चलना है, जमाने के साथ चलना है तो बस खामा खा का बहाना है भाई। जो जो नेक लोग होते हैं ना, साले लोग जो होते हैं ना, वो भी इसी जमाने में रहते हैं। ये जो जमाने के साथ चलना है ना, ये एक मुहावरा है विच डजेंट रियली मीन मच, ठीक है, क्योंकि नबी भी तो उसी जमाने में रहते हैं, है ना, जो सालेहीन जो सहाबा नबी के होते हैं, जो मुत्तकी होते हैं, वो भी तो उसी जमाने, भाई आप उनके साथ चले तो वो भी तो आप कह सकते हैं ना जमाने के साथ चलना है, वो भी तो जमाने के लोग हैं ना, राइट। तो ये है ना खामखा की उल्टी सीधी बस मुहावरे हमने बनाए हुए हैं जमाने के साथ चलना, वरना तो जमाने तो हमेशा से यानी दो दो किस्म के लोग रहते हैं। चुनाचे जाहिर है कि ना इत्तेफाकी मजमू वही है जो हक के खिलाफ करने से हो, तो इसका इल्जाम ईमान वालों पर नहीं हो सकता बल्कि अहले कुफर पर, ठीक है ना। ऐसे जो ईमान वाले होते हैं ना, ये मुतजलजल नहीं होते कि यार पता नहीं इतने लोग हमारी मुखालफत करें तो शायद मे बी वी आर द वंस हु आर नॉट राइट, है ना, हम वो अपने ऊपर ही शक करना शुरू हो जाए, है ना, कि भाई शायद हम ही जो है ना वो कुछ गलत कर रहे हैं। भाई आप अपने जात के ऊपर गलत का तो चलो ठीक है, आप जाती तौर पर आप जो है वो ज्यादा नेक नहीं बन सके, आप जो है वो नहीं, लेकिन अपने अकाबरीन के ऊपर या जो वही है उसके ऊपर तो शक कि बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपका ईमान उसी वक्त कामिल होता है जब जो दीन हमारे अकाबरीन से हमें मिला है, ऊपर से हमें मिला है, उसके ऊपर हमारा पक्का यकीन हो कि ये सच है, और जो खराबियां आई हुई हैं वो इसके ऊपर ना अमल करने की वजह से आई हुई है, ना अमल करने की वजह से खराबी आई, ठीक है। तो साले अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, ये तो मनहूसत और जो कुछ भी ना इत्तफाकी वगैरह है ये तुम्हारी वजह से है, ठीक है, अहले कुफर जो कि इसका इसका इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बास तफासीर में है कि उन पर कहत हुआ था और तुम्हारे कुफर की मुजर्रत कुछ इन शुरूर ही तक खत्म नहीं होगी, यानी कहत जैसे नहुसत हुई थी तो कहत की शक्ल में बाज मुफस्सरीन ने लिखा है, और तुम्हारे कुफर की मुजर्रत कुछ इन शुरूर ही तक खत्म नहीं हुई बल्कि तुम वो लोग हो कि इस कुफर की बदौलत अजाब में मुबतला हो गए, और यूं तो काफिर इस कौम में बहुत थे लेकिन सरगना इस बस्ती यानी हिजर में 9 शख्स थे, ठीक है। अब हजरत थोड़ा सा एक्चुअली कुरान मजीद में थोड़ी सी इसकी और तफसील आ रही है। एंटेगोनिस्ट विलन कौन होगा, एंटेगोनिस्ट विलन कौन होगा, नहीं पता नहीं, आप समझा नहीं आपकी बात। तो साल अलैहिस्सलाम की कौम का मामला क्या था कि आपको पता है कि इन लोगों ने जो है वो ऊँटनी का यानी एक 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 निशानी का मुतालबा किया था, मौजजे का मुतालबा किया था, ठीक है। तो साल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला से दुआ करी तो अल्लाह ताला ने पहाड़ के अंदर से ना एकदम से एक पहाड़ में से जैसे शक हुआ, खुला पहाड़ और उसके अंदर से एक ऊँटनी निकल के आ गई, ठीक है ना। अब ये ऊँटनी का मामला क्या था, ये अल्लाह ताला की निशानी थी, ठीक है। तो अब उस ऊँटनी को देख करके जो है ना वो कौम के बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गए, और बाकी जो थे ना उन्होंने इरादा कर लिया मुसलमान होने का, इरादा कर लिया मुसलमान होने का, लेकिन हुए नहीं मुसलमान, बल्कि उन्होंने जो है ना वो ईमान को मुअख्खर कर दिया, आज नहीं कल, कल नहीं परसों ही मुसलमान हो जाएंगे, परसों में अभी 2 दिन जरा हम मजे कर लेते हैं, 2 दिन जरा और एंजॉय कर लेते हैं, बाद में मुसलमान हो जाएंगे। ये जो होता है ना ईमान को डिले करना यानी तौबा को डिले करना, देखिए हमारे ऊपर जो चूंकि हम मुसलमान है ना सारे बैठ के तफसीर पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए ये तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है कि हम ईमान को डिले कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इस नजर से देखें तौबा को डिले करना, चंद दिन और मजे कर लो और जरा याशी कर लो और जो है ना वो अपना टाइम जाया कर लो फिर बाद में तौबा कर लूंगी या बाद में तौबा कर लूंगा, ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, ये एक नया गुनाह है कि तौबा को मुअख्खर करना, ठीक है, और इस गुनाह का बहुत बड़ा वबाल हो जाता है, बहुत, यानी ये वाला जो गुनाह है ना, तौबा को मौखर करने वाला गुनाह। भाई आपको जब कोई चीज सच्ची पहुंच गई, ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि हाँ यही सच है, यही अच्छा रास्ता है, आप क्यों डिले कर रहे हैं? अब तो हुज्जत तमाम हो गई, अब तो आपको राइट अवे तौबा करनी है, अभी नाउ एंड इसी वक्त तौबा करनी है, क्योंकि आप तक हिदायत पहुंच गई, आपको समझ में आ गई। अब जो आप डिले करेंगे ना, ये इंतहाई खतरनाक मामला होता है, इंतहाई खतरनाक। क्यों? इसलिए टाइम होता तो आप लोगों से पूछता है कि क्यों, ठीक है, लेकिन जल्दी की वजह से, इसलिए क्योंकि जब आपके सामने हिदायत खुल गई, सच पहुंच गया, और आपने उसको यानी समझ लिया कि हाँ यही सच है, अब शैतान, ये नेगेटिव फोर्सेस को हम भुला नहीं सकते, बहुत बड़ी हमारी गलती है कि हम शैतान को भुला देते हैं और शैतान का जिक्र ही कोई नहीं करते, ठीक है ना। अल्लाह ने शैतान का जिक्र किया, नबी अलैहिस्सलाम ने शैतान का जिक्र किया, हम कौन होते हैं शैतान को गोल करने वाले, मजहूल बात करते हैं, है ना, यही खराबी हो गई, ये वो खराबी हो गई, वो खराबी हो गई। भाई किसने खराबी करी? हमारा दुश्मन हमारे साथ पीछे लगा हुआ है, वो खराबी करता है और हम उसकी बात मानते हैं, इस वजह से खराबी होती है, ठीक है। तो शैतान जो है वो फिर मुतवज्जो हो जाता है कि दिस गाय इज ये निकल रहा है मेरे हाथों से। अब उसकी जो मेहनत होती है ना उस बंदे के ऊपर, वो 10-फोल्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो अब जो ये डिले कर रहा है ना तौबा को, इस दौरान जो है ना वो ऐसे असबाब बनाता है, ऐसी तदबीर बनाता है कि इसकी जो डिलेड तौबा थी ना, फिर वो कभी होती नहीं है। तो इनके साथ भी यही हुआ है ना, इन लोगों ने कहा जी हाँ ये तो मुआवजा तो हो गया है, और ये तो बिल्कुल साबित हो गया कि यही जो है वो सच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों मान जाएंगे, इनके ऊपर ईमान ले आएंगे, अभी थोड़े से जरा और, है ना, अपनी मनमर्जी वाली जिंदगी थोड़ी सी और गुजार लो। ले भाई, उनके ऊपर तो फिर उनके सरदार आए, यानी जो इंसानी शैतान होते हैं वो आए, उन्होंने आकर के इनको दलीलें देनी शुरू करी, कन्विंस कर लिया इनको, ये क्या तुम एक ऊंटनी को देख करके तुम जो है वो अपने बाप दादा का मतलब छोड़ने वाले हो, एक ऊंटनी को देख करके जो है वो तुम जो है वो यानी इसको फॉलो कर लोगे, एक ऊंटनी की वजह, इस किस्म की बातें ना, समझाने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी जो है ना फिर रह गए ईमान से, वो भी ईमान से रह गए, ठीक है। फिर उसके बाद ऊंटनी का जो सिलसिला शुरू हुआ कि भाई एक दिन वो तय हुआ कि भाई अब तुमने ऊंटनी मंगवाई हो तो अब इसके कुछ तकाजे होते हैं। तकाजा क्या था कि जी इसने जो है वो जो कुएं थे पानी के, तो उस पानी के कुएं में से एक दिन इस ऊंटनी ने पीना था और दूसरे दिन जो है वो कौम ने पीना था। अच्छा, अल्लाह ताला ने इतनी आसानी करी थी कि जिस दिन ऊंटनी पानी पिया करती थी ना, तो वो सारा कुआं ही खाली कर देती थी, ठीक है ना, और इन लोगों के लिए कुछ नहीं बचता था। लेकिन वो ऊंटनी जिस दिन पानी पिया करती थी, उसी दिन ऊंटनी जो है ना वो दूध भी दिया करती थी, और इतना दूध देती थी कि पूरी कौम जो है ना वो अपने बर्तन भर लेती थी उस दूध से, है ना। तो भाई दूध पी लो तुम यार, है ना, इतन, पानी का अच्छा जबरदस्त ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, तो तुम दूध पी लो। नहीं, हमें तो पानी चाहिए आज के दिन, भाई पानी तुम्हारे लिए अगले दिन है, आज के दिन तुम दूध पी करके गुजारा करो। अब तुमने जब मुआवजा मांगा था तो अब कुछ तो उसकी कॉस्ट होगी ना, लेकिन नहीं, वो इस तकलीफ में रहे। बिलाखिर जो है ना वो उनके यहाँ जो है वो कुछ औरतें थी बड़ी हसीन जमील, तो उन्होंने जो है ना वो कहा कि जी ये ऊंटनी जो है ना इसको जो मारेगा हम उसके लिए हाजिर हैं, है ना, हम वो हमसे शादी करना चाहे या हमारी बेटियों से शादी करने, सारी हसीन जमील औरतें थी, तो जो इस ऊंटनी को मारेगा उसके लिए हम तैयार हैं, ठीक है। तो उसमें से दो बंदे थे, एक ने तीर मारा ऊंटनी को और दूसरे ने जो है ना वो तलवार से उसकी पूंछे काट दी, टांगे काट दी, बिलाकर वो ऊंटनी मर गई। उस बंदे को अल्लाह ताला ने फरमाया कि फालहमाहा फुजूरहा, नहीं, फालहमा नहीं, ये उसके क्या था, उस बंदे ने जो कूचे काट दी थी बड़ा इज़िम बासा अशकाहा, है ना, उसमें सबसे ज्यादा शकी था ना उनमें से, तो वो खड़ा हुआ और उसने मार दिया उस ऊंटनी को। फिर उसके बाद जो है ना साले अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम 3 दिन के अंदर, तुम्हारे अंदर अजाब आने वाला है तुम्हारे ऊपर, एक दिन जो है वो तुम्हारा चेहरा, सबका चेहरा जो है वो जर्द हो जाएगा, दूसरे दिन जो है तुम सबका चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाएगा, और तीसरे दिन जो है वो तुम सबका चेहरा जो है वो काला स्याह हो जाएगा, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हें हलाक कर देंगे। अब जब इन लोगों ने ये सुना और इनकी फ्रस्ट्रेशन और साले अलैहिस्सलाम के साथ जो इनकी दुश्मनी थी ना और ज्यादा भड़क गई, और इनमें से फिर जो है वो ये लोग खड़े हुए, है ना, जिनका कि अब जिक्र है कि यूं तो इस काफिर इस कौम में बहुत थे, लेकिन सरगना इस बस्ती यानी हिजर बस्ती जो कि यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर अल उला का जो एरिया है, अल उला के करीब जो है ना ये हिजर वाली बस्ती मौजूद है, जिसको कि मदाइने सालेह भी कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर 9 लोग थे जो कि इनके लीडर बने हुए थे, जो सरजमीन यानी बस्ती से बाहर तक भी फसाद किया करते थे और जरा इस्लाह ना करते थे। ठीक है, तो इन 9 लोगों ने फिर फैसला किया कि हम जो है ना वो सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर शब खून मारेंगे और इनको और उनके पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। तो उन्हीं का तस्कर अब यहाँ पर है कि यानी बाज़े मुफसिद ऐसे होते हैं कि कुछ फसाद किया कुछ इसलाह कर ली, मगर ये जो 9 लोग थे ना वो ऐसे नहीं थे बल्कि खालिस मुफसिद थे। चुनाच एक बार ये फसाद किया कि उन्होंने एक दूसरे से कहा कि आपस में सब इस पर अल्लाह की कसम खाओ, देखिए अल्लाह को जानते थे अल्लाह को मानते थे, कसम भी अल्लाह की खा रहे हैं, है ना, वो तो शिर्क करते हैं और नबी को का इनकार करते हैं, इस वजह से मारे जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो अल्लाह की कसम खाओ कि हम शब के वक्त सारे और उसके मुतालिकीन यानी ईमान वालों को जा मारेंगे, फिर अगर तहकीक की नौबत आई तो हम उनके वारिस से जो खून का दावा करेगा कह देंगे कि उसके मुतालिकीन को और खुद उनके मारे जाने में हम मौजूद ही नहीं थे, मारना तो दरकिनार, हम तो वहां थे ही नहीं, और ताकीद के लिए भी कह देंगे कि हम बिल्कुल सच्चे हैं। इसके बारे में हजरत ने आगे बड़ा अच्छा कलाम किया है, और गवाह कोई मुआयने का होगा नहीं, बस बात दब जाएगी। और ये मशवरा करके उन्होंने एक खुफिया तदबीर की कि शब के वक्त इस कार्रवाई के लिए चले, रात के वक्त वो सारे के सारे जो है ना चले सलाम और उनके हवारियों को मारने के लिए, और एक खुफिया तदबीर हमने की। ठीक है, कि उन्होंने की और हमने भी एक तदबीर की और उनको खबर भी ना हुई। वो ये क्या कि एक पहाड़ पर से एक पत्थर उन पर लुढ़क आया और वो सब वहां ही खेत रहे यानी हलाक हो गए। ठीक है, कदाफित दुर्रिन मंसूर। सो देखिए उनकी शरारत का क्या अंजाम हुआ कि हमने उनको बतारीक़े मज़कूर और फिर उनको उनकी बाकी कौम को आसमानी अजाब से सबको गारत कर दिया। तो ये सारे के सारे तो इस वक्त ही मर गए, और बाकी जो लोग थे ना वो 3 दिन का जो वो चेहरे चेहरों के रंगत चेंज होने वाला अजाब था, उसके बाद जो है ना फिर जलजला भी आया और चीख भी आई और वो सारे के सारे हलाक हो गए, जिसका किस्सा दूसरी आयात में है। फ़ाकरुन्नाक़ता फअखदत हुमुर रजफतु से लेकर के वहां तक वह अखद लदीन वलमुसैहा, सो ये उनके घर हैं जो वीरान पड़े हैं हिजर की बस्ती में, जो सारे के सारे आपको यूनेस्को की साइट्स नजर आती है ना, तो ये वो उनके घर हैं जो वीरान पड़े हुए हैं उनके कुफर के सबब से, जो अहले मक्का को मुल्क शाम के सफर में मिलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल तबूक के रास्ते से आप थोड़ा सा और नहीं, तबूक से पहले ये जगह पड़ती है, मदीना मुनव्वरा से ऊपर की तरफ जब ट्रैवल करते हैं या मक्का मुकरमा से तो शाम की तरफ ट्रैवल करते हैं ना, तो ये सहाबा कराम को रास्ते में जगह मिलती थी नजर आती थी। नबी अलैहिस्सलाम उनको मना फरमाया जब जब जा रहे थे गज़वे तबूक के लिए कि ना तो इनके बस्तियों के अंदर जाओ और ना इनके कुएं का पानी पीना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह का अजाब आया था। तो बिलाशुबा इस वाकये में बड़ी इबरत है दानिशमंदों के लिए, और हमने ईमान और तकवा वालों को इस कत्ल से भी जिसका मशवरा हुआ था और अजाब तहरी से भी निजात दे दी। ठीक है, ऑन द वे टू तबूक फ्रॉम जी, ठीक है, हाँ अल उला का शहर है जहां पर के बाकायदा वो तुर्कों ने जो है वो रेलवे स्टेशन वगैरह भी बनाया था, हिजाज रेलवे का स्टेशन वगैरह भी वहां पर है, और ये हिजर की बस्ती वहीं से बहुत ही करीब है। ठीक है, तो माफी आपका एक्स्ट्रा टाइम भी ले लिया और देर से भी शुरू किया था, यहाँ पर खत्म करते हैं। आखिर दुआ अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।